पहले दो पदों में उसके उन्होंने लीला का वर्णन किया, फिर तीसरे उसके विषय का वर्णन किया, कि इसके बाद वो अपनी प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं, याचना व्यक्त कर रहे हैं। फिर भगवान सुंदर बताया गया है कि जो प्रार्थनाएं होती हैं तीन प्रकार की होती हैं, संप्रार्थनात्मिका, दैव बोधिका और याचनात्मिका। संप्रार्थनात्मिका मतलब भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, दैव बोधिका मतलब हम खुद की दीन परिस्थिति है उसका वर्णन करते हैं, और लालसा मनी मतलब जब हम कुछ आध्यात्मिक इच्छा है वह कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो पैबिक जो प्रार्थनाएं थे वह अधिकांश संप्रार्थना हम करते हैं, भगवान की महिमा के बारे में, भगवान की माधुरी महिमा के बारे में हो रहा है। तो अभी यहाँ से जो है वहाँ से भी लालसा मनी प्रार्थना चाहिए होते हैं। तो भगवान का गुणगान करते हैं तो क्या चाहिए, साधारण कोई रईस को बड़ा धनवान व्यक्ति होता है, लोग जाते हैं उसके पास ऐसे होते हैं दान चाहिए होता है, साधारणतः लोग चाहते हैं भगवान के पास जाते हैं कि धर्म अर्थ काम की, धर्म करते हैं अर्थ और काम के लिए। धर्म में लोग जाते हैं कि हे भगवान हमको आप ब्रेड दे दो, तो वो पागल दावा हेलो की जाएंगे भगवान आप हमारा हमें अन्न दे दो, अच्छा है कि भगवान के पास कम से कम जा तो रहे किसी किसी कारण से, पर जब भगवान से हम अन्न मांगने जाते हैं तो उससे हमारा अन्न के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं दर्शाया जाता है। तो धर्म है वो अर्थ और काम के साधारण होता है, और सत्यव्रत मुनि इस भक्ति के यहाँ वर्णन कर रहे हैं वहां पे अर्थ और काम का सवाल ही नहीं होता है, पर जो ज्ञानी लोगों में सर्वश्रेष्ठ जीवन सिद्धि मानी जाती है मोक्ष, वे कह रहे हैं मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न, वरम देव, देव मतलब जो देते हैं, तो वरम देव आप वर दे सकते हैं, तो मोक्षम न, मोक्ष नहीं चाहिए, तो मोक्ष देव अवधि मतलब उससे भी बड़ा, अभी मोक्ष से बड़ा क्या है, उससे बड़ा है वैकुंठ में वापस, मोक्ष जो है वहां पे शांति है, पर वैकुंठ में तो वैकुंठ भक्ति जो है शांति से ऊंची है, मोक्ष मुझे वैकुंठ में वापस नहीं चाहिए, वरदीशा जो आप सब प्रकार के वरों के स्वामी हैं, मैं चांद्य रहेंगे मुझे और कोई वर भी नहीं स्वीकार करना है, अभी मोक्ष और वैकुंठ इसके अलावा इसके परे और क्या वर हो सकता है, चांद्य स्वयं बताते हैं कि अगर भक्ति में पूर्णतया चित्त लग जाए तो यह पूर्णतया भक्ति में चित्त लगना यह वैकुंठ की प्राप्ति से भी ऊंचा स्तर है, क्योंकि वैकुंठ की विशेषता क्या है, वैकुंठ केवल एक जगह नहीं है, जगह है जरूर वो पर केवल जगह नहीं है, वह एक चेतना भी है, चेतना जो जिसे भगवान बताते हैं नाम हम बसामि वैकुंठे योगी नाम देशो यत्र गाम्यन्ति मन भक्ता तत्र निश्चामि नारद, वे कहते हैं नारद भक्ति से कि मैं योग के हृदय में वास नहीं करता, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ पर मैं वास करता। तो यह जो वाक्य है इसका मतलब क्या है, भगवान तो वैकुंठ में है, भगवान योगिंद्र में है, पर क्या है वहां पे हम सब भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते, पर जब भक्तों के सामने आके भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है, तो हम सब वहां पे भक्तों के वहां भगवान के अस्तित्व को महसूस कर सकते। तो इसलिए अगर कोई भक्ति में लग जाता है तो भक्ति में लगने से कोई साधारण व्यक्ति जो है भगवान के इसको महसूस कर सकता है, इसीलिए भक्ति में पूर्णतया चित्त लगना यह वैकुंठ की प्राप्ति से ऊंचा माना है, क्योंकि वैकुंठ की विशेषता क्या है कि भक्ति में चित्त लगना, इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि मेरा चित्त आपके भक्ति में पूर्णतया लग गया है तो मुझे वैकुंठ कैसे प्राप्त होगा, कैसे भौतिक के पार जाऊंगा, इसकी भी चिंता नहीं हो विजय चित्ता। जब मेरा चित्त मग्न हो गया है आपके गुणगान में तो मैं कैसे भाव बंधन से मुक्त हो गए वैकुंठ प्राप्त, इसकी चिंता नहीं है। तो कहते हैं क्या चाहिए,
पहली लालसा करते हैं, पहली इच्छा करते हैं, मुझे केवल सदा आपका स्मरण।